शान्तिमिदन्तस्य गाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् अहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चकल्पतरूपिणश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा टेक्स्ट 17 नयत्र कालो निमिषान् पर प्रभो कुतो या
नयत्र कालो निमिषान् पर प्रभो
कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे नयत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् ट्रांसलेशन इन दैट ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ लब्धोप शांति देर इज नो सुप्रीमसी ऑफ डिवास्टेटिंग टाइम विच कंट्रोल्स इवन द सेलेस्टियल डेमिगॉड्स हु आर एम्पावर्ड टू रूल ओवर मंडेन क्रिएचर्स एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ द डेमिगॉड देमसेल्व्स Nor is there the material goodness, nor passion, nor ignorance, nor even the false ego, nor the material causal ocean, nor the material nature. तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि कैसे योगी मन को भौतिक इंद्रिय तृप्ति से निकालता है और बुद्धि को शुद्ध बना के भगवान के साथ लीन होता है भगवान की प्राप्ति करता है तो ये स्तर को लब्धोप शांति बोलते हैं लब्धोप शांति विरमेत कृत्यात् तो यहाँ पे ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये जो स्तर है समाधि का जो स्तर है जिसमें व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है ये स्तर पे समय का प्रभाव नहीं होता न यत्र कालो निमिषान प्रभ प्रभु तो काल जो लोगों का आयु घटाता है लोगों को चीज़ों को मिटाता है जो काल है उसका प्रभाव ऐसे व्यक्ति पे ऐसे जो स्तर पहुंच गया है लब्धोप शांति उसको लगता नहीं है और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं काल के प्रभाव में देवता भी रहते हैं कुतो नु देवा जगताम या ईशिरे जो देवता हैं जो बाकी जीवों को नियंत्रित करते हैं वो भी काल के अनुसार चलते हैं पर जो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है उसको काल छूता नहीं है और ऐसे जो स्तर है लब्धोप शांति समाधि का जो स्तर है वहाँ पे सत्व गुण में नहीं है न यत्र सत्वम न रजस तमश्च सत्वगुण का भी प्रभाव नहीं होता रजोगुण का भी प्रभाव नहीं होता तमोगुण का भी प्रभाव नहीं होता न वही विकारों अलग अलग विकार भी नहीं होता न महान प्रदानम अहंकार भी नहीं है और जो भौतिक प्रकृति है उसका भी प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये जो स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है, लब्धोप शांति का वर्णन कर रहे हैं। परपोर्ट, डिवास्टेटिंग टाइम विच कंट्रोल्स इवन द सेलेस्टियल डेमिगॉड्स बाई इट्स मैनिफेस्टेशंस ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर डज नॉट एक्ट ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन। जो समय अलग अलग देवताओं को भी नियंत्रित करता है, और समय का मतलब है भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, पर जो आध्यात्मिक स्तर पे है वहाँ पे समय ही नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है, वहाँ पे महसूस होता है कि समय नहीं है, निरंतर शाश्वत काल से वहाँ पे आनंदमयी जीवन चलता रहता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम इज एग्जिबिटेड बाई द सिम्टम्स ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, एंड दीज फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मटीरियल कंडीशंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द मटीरियल कॉस्मोस अप टू द प्लैनेट ऑफ ब्रह्मलोक, वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द इनहैबिटेंट्स अपीयर्स टू अस टू बी फैबुलस। तो समय का होना उसके अलग अलग चिन्ह से, सिम्टम से समझ में आता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी का अलग अलग सिम्टम रहता है। तो समय है कैसे समझ में आता है, चार चीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब चार चीज है, मतलब व्यक्ति समय के प्रभाव में है। तो ये पूरे भौतिक दुनिया में, हरेक ब्रह्मांड में, 14 लोकों में ये समय का प्रभाव रहता है, कोई बच नहीं सकता। ब्रह्मलोक तक भी कोई जाएगा, ब्रह्मलोक में जो निवासी हैं उनका आयु बहुत बड़ा रहता है, पर फिर भी उनका मृत्यु होता है, समय के अधीन है। इनसरमाउंटेबल टाइम इवन ब्रिंग्स अबाउट द डेथ ऑफ ब्रह्मा, सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर डेमिगॉड्स लाइक इंद्रा, चंद्रा, सूर्य, वायु एंड वरुणा। जो समय है, जो बहुत दुरंत है, ये जो समय बहुत शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी का भी अंत होता है समय के प्रभाव से। इसलिए जब हिरण्यकशिपु तपस्या करता है ब्रह्मा जी को वर मांगने के लिए, और ब्रह्मा जी को बोलता है कि मुझे अमर बनाओ, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, ब्रह्मा जी का आयु बहुत बड़ा है, अरबों खरबों साल है, फिर भी उनका अंत होता है। तो अगर ब्रह्मा जी का अंत होता है तो इंद्र का, चंद्र का, सूर्य, वायु का क्या कहना, और हम सब जो साधारण जीव है उनका क्या कहना। तो ये भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्य अपिहारम अर्ते न तुम शोचितुम हरसी। तो गीता में भगवान बोलते हैं जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसने मृत्यु पाया है उसका अगला जन्म निश्चित है, अगर कोई भगवान के धाम नहीं जाएगा। तो ये समय के प्रभाव से कोई मुक्त हो नहीं सकता, नो वन कैन एस्केप डेथ। तो एक कहानी आता है, व्यासदेव के जो दादाजी है, ग्रैंडफादर है, वो एक बार व्यासदेव के पास आके बोलते हैं मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, कुछ तो सोल्यूशन दे दो। तो व्यासदेव क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, शिव जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी, व्यासदेव, उनके दादाजी शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी बोलते हैं चलो हम यमराज के पास जाएंगे। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, व्यासदेव, व्यासदेव के दादाजी, सब लोग यमराज के पास जाते हैं। तो यमराज बोलते हैं जो जन्म लेगा उसका मृत्यु निश्चित है, ठीक है चलो हम भगवान के पास जाते हैं। तो वो लोग भगवान के पास जाते हैं, और वहाँ पे भगवान बताते हैं एक्चुअली व्यासदेव के दादाजी का मृत्यु कब लिखा है, जब शिवजी, ब्रह्मा जी, यमराज, व्यासदेव सब साथ में आएंगे उसी समय व्यासदेव के दादाजी का मृत्यु होगा, तो उसी समय उनका मृत्यु हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कितना भी महान व्यक्ति रहेगा ये भौतिक दुनिया के मृत्यु से बच नहीं सकता। एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड बाई द डिफरेंट डेमिगॉड्स ओवर मंडेन क्रिएचर्स इज ऑल्सो कॉन्स्पिशियस बाई इट्स एब्सेंस। तो आध्यात्मिक जगत में ये जो अलग अलग ग्रह के प्रभाव है, एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, अलग अलग ग्रह अलग अलग देवता हर एक जीव पे प्रभाव डालते हैं। कभी राहु का प्रभाव रहता है, कभी शनि का प्रभाव रहता है, कभी गुरु का प्रभाव रहता है, पर जो आध्यात्मिक स्तर पे है इनको ये सब प्रभाव छूता नहीं है। इन द मटीरियल एग्जिस्टेंस द लिविंग एंटिटीज आर अफ्रेड ऑफ सैटानिक इन्फ्लुएंस, बट फॉर अ डिवोटी ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन देयर इज नो सच फियर एट ऑल। भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति डरा है, शनि तो नहीं लगा, हाँ शनि का प्रभाव तो नहीं हुआ मेरे जीवन में, ये सब लोग डरे हैं ये दुनिया में, हाँ भूत प्रेत का प्रभाव तो नहीं हुआ मेरे जिंदगी में, पर जो भक्त हैं जो आध्यात्मिक स्तर पे हैं उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भगवान की भक्ति करता है ये सब जो प्रभाव है उसको छूता नहीं है। द लिविंग एंटिटीज चेंज देयर मटीरियल बॉडीज इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, बट इन द ट्रांसेंडेंटल स्टेज द डिवोटीज गुणातीत और अबव द मटीरियल मोड्स ऑफ पैशन गुडनेस एंड इग्नोरेंस। तो ये भौतिक दुनिया में हर एक जीव अलग अलग शरीर बदलता है, तो जैसे वर्णन आता है ये तीन कलर है ना, बेसिक कलर बोलते हैं, रेड येलो एंड ब्लू, नहीं ये तीन बेसिक कलर है, ये तीन कलर को अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिश्रण करो लाखों कलर मिलते हैं, है कि नहीं। आप पेंट के दुकान में जाएंगे, जब हम हमारे अल्ट्रॉन प्लाजा का पेंटिंग कर रहे थे तो हम पेंट के दुकान में गए थे पेंट कलर चूज करने के लिए, तो उन्होंने चार्ट दिखाया था, हजारों कलर है, शेड्स है, वो चुनने में टेंशन आता है, इतने इसने में से कितना चुनेंगे। और ब्यूटी क्या है, आप कौन सा भी चुनो, वो पेंट कैसे बनाते हैं, एक मशीन होता है, अंदर वाइट डब्बा डालते हैं, प्लेन वाइट पेंट डालते हैं, और ये मशीन अलग अलग परसेंटेज, ये जो ये तीन कलर का रेड येलो एंड ब्लू, इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन डालता है और अलग अलग कलर बनता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये तीन बेसिक कलर उससे अलग अलग कलर बनते हैं, वैसे ही रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ये तीन गुण के प्रभाव से अलग अलग कॉम्बिनेशन से 84 लाख योनि बोलते हैं अलग अलग शरीर, किसी में सत्व ज़्यादा है, किसी में रजो ज़्यादा है, किसी में तमो ज़्यादा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन। पर जो भगवान के भक्त हैं जो आध्यात्मिक स्तर पे है वो कैसे हैं, गुणातीत, ये तीन गुणों के परे हैं। मामचो यो व्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते, भगवान गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है अनन्य भक्ति, ऐसा जो भक्त है सगुणान समिति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा जो भक्त है ये तीन गुणों से परे जाता है और ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचता है। Thus the false ego of I am the lord of all I survey does not arise there. जब व्यक्ति ऐसा समाधि का स्तर पाता है वो अहंकार से दूर हो जाता है। ये दुनिया चल रहा है अहंकार के वजह से, आध्यात्मिक हम जो आत्मा है आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शक्ति है, और ये जो शरीर है भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति साथ में मिश्रण नहीं होता उसका, पर अभी मिश्रण हो गया है, दोनों बंद गए हैं, किसके वजह से, अहंकार के वजह से। अहंकार वो फेविकॉल है जो हमारे शरीर को आत्मा के साथ जुड़ाता है, तो इसलिए जो व्यक्ति मुक्त होता है उसका अहंकार कट जाता है, अहंकार का बंधन ये जो रस्सी है कट जाता है। और अहंकार का मतलब क्या है, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, मैं स्वामी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ये अहंकार है और हर एक व्यक्ति में है। ये भौतिक दुनिया में भिखारी के पास भी अहंकार है कि मैं ये रास्ते का अकेला भिखारी हूँ, उसका भी एक अहंकार होता है, हाँ मैं पंजिम का सबसे मेन रोड का भिखारी हूँ, अहंकार। सो इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ इस पेनी, जो भिखारी भी है अपने सिक्के से घमंडी है, तो ये अहंकार है, इसके वजह से हम दुनिया में रहते हैं। इन द मटीरियल वर्ल्ड द the false ego of the living entity trying to lord it over the material nature is something like the moths falling in a blazing fire. तो ये दुनिया में अहंकार, अहंकार के वजह से हम भोग करने का प्रयास करते हैं. तो ये जो भोग करने का प्रयास है, अहंकार है, इससे हमारा नाश होता है, हम फंस जाते हैं ये दुनिया में. जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, एक वो जो रात का कीड़ा होता है जो बिजली के प्रति आकर्षण प्राप्त करता है, तो वो ये कीड़ा जब आग देखता है या गर्म बल्ब देखता है उसके पास भाग के जाता है, आकर्षण रहता है, पर वहाँ जाके जला जल जाता है, मर जाता है. अब सुबह उठ के देखो हजारों कीड़े मरे पड़े हैं उधर. क्यों क्यों मर गया वो? क्योंकि उसको भोग करने का इच्छा था, उसको लग रहा था कि ये बल्ब का स्वामी मैं हूँ, मैं भोग करूँगा. पर ये भौतिक दुनिया को कोई भोग नहीं कर सका. जैसा रावण है, रावण को लग रहा था मैं सीता का भोग करूंगा, पर रावण को पता नहीं था सीता आग है, तो सीता ने रावण को जला दिया, भस्म कर दिया. तो इसलिए जब तक हम ये दुनिया में भोग करने का प्रयास करेंगे तब तक हम हमारा स्वयं का नाश करेंगे. ध्यायतो विषया पुंसा संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो बिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. तो जब हम ध्यायतो विषया पुंसा, ये भौतिक दुनिया के विषयों के प्रति, आकर्षणों के प्रति ध्यान करेंगे और काम वासना बढ़ाएंगे, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उससे हमारा नाश हो जाएगा. द मॉथ इज कैप्टिवेटेड बाई द ग्लैरिंग ब्यूटी ऑफ द फायर एंड वेन ही कम्स टू एन्जॉय द ब्लेजिंग फायर कंज्यूम्स हिम. ये जो कीड़ा है रात का, इतना आकर्षण प्राप्त करता है ये आग के प्रति, भाग के आता है भोग करने का, पर जल जाता है, मिट जाता है. इन द ट्रांसेंडेंटल स्टेट द लिविंग एंटिटी इज प्योर इन इट्स कॉन्शियसनेस एंड as such, he has no false ego to lord it over the material nature. पर आध्यात्मिक स्तर पे, लब्धोपशांति समाधि के स्तर पे, जीव का जो चित्त है पूरा शुद्ध रहता है, प्योर कॉन्शियसनेस. तो हम सब का चित्त एक समय शुद्ध था, पर ये भौतिक दुनिया में आके अलग अलग आकर्षणों के वजह से, हमारे काम वासनाओं के वजह से हमारा जो चित्त है दूषित हो चुका है. और दूषित जगह पे दूषित चित्त के साथ कोई सुख प्राप्त नहीं करेगा. तो सुख शांति का एक ही मार्ग है, चेतो दर्पण मार्जनम. हमारे चित्त को साफ करना है, दर्पण को साफ करना है. तो ये भक्ति का मार्ग है, ये दर्पण को साफ करना. और जब हम ये दर्पण को साफ करेंगे तब हम ऑटोमेटिकली आनंद की प्राप्ति करेंगे. जैसे ये महीना कार्तिक महीना है तो दामोदर लीला शुरू होता है, क्योंकि कृष्ण मक्खन चुराने के लिए जाते हैं. तो कृष्ण को मक्खन पसंद है क्योंकि मक्खन सफ़ेद और मुलायम है. तो वैसे ही अगर हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में, हमारे हृदय में मक्खन चोर आए और हमारे हृदय के का जो भक्ति है उसको चुरा के लेके जाए, उसके लिए हमारे हृदय को, हमारे चित्त को हमको मक्खन की तरह मुलायम और सफ़ेद बनाना पड़ेगा. जब तक हमारा चित्त पत्थर की तरह काला रहेगा भगवान नहीं आएंगे, मक्खन चोर नहीं आएंगे, दुनिया का कली का चोर ही आएगा हमारे हृदय को चुराने के लिए. इसलिए कृष्ण चाहिए तो हृदय को शुद्ध बनाना है. Rather, his pure consciousness directs him to surrender to the Supreme Lord, as it is stated in Gita 7.19, Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. इसलिए जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, ऑटोमेटिकली वो भगवान के शरणागत जाता है. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. तो बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद कोई एक ज्ञानी बनता है, और ऐसे हजारों ज्ञानी में से कोई जानता है कि भगवान वासुदेव सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. मुक्तानाम अपि सिद्धानाम कोटिष्वपि महामुने सुदुर्लभ प्रशांतात्मा मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। तो ऐसे बहुत सारे मुक्तात्मा और सिद्धात्माओं के बाद कोई एक नारायण परायण रहता है, कोई भगवान का पूरा आश्रय लेता है, ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ, बहुत रेयर है, बहुत कठिन है ऐसा व्यक्ति मिलना। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा और पूरे तरह से प्रसन्न रहता है, हाँ, कोटि शपि महामुने, ऐसे हजारों कोटि मुनियों में से कोई भगवान का दास बनता है। ऑल दिस इंडिकेट्स दैट इन द ट्रांसेंडेंटल स्टेट देयर इज नीदर मटीरियल क्रिएशन नॉर द कॉजल ओशन फॉर मटीरियल नेचर। इसका मतलब है ये जो दिव्य स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है, समाधि का स्तर है, लब्धोप शांति का स्तर है, यहाँ पे भौतिक गुण, भौतिक जो कर्म है ऐसे व्यक्ति को छूता नहीं है। The above mentioned state of affairs is the factual on the transcendental plane, but is factually revealed in a transcendentalist knowledge of the advanced stage of pure consciousness. तो ये सब जो ज्ञान है आध्यात्मिक स्तर का, जैसे व्यक्ति अपना चित्त को शुद्ध बनाता है उतना उसको ज्ञान मिलता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण देते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त एक दर्पण की तरह है, एक आईने की तरह है, जितना हम आईने को साफ करेंगे उतना हम भी दिखाई देंगे, भगवान भी दिखाई देंगे और ये दुनिया भी दिखाई देगा। हम आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य है भगवान का दास बनना, भगवान कौन है ये सब कैसे दिखाई देगा, हमारे चित्त को शुद्ध करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान आता है। फॉर द इम्पर्सनलिस्ट सच ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स नेमली द इम्पर्सनलिस्ट एंड द डिवोटीज। ऐसे जो ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्तर पे है, ऐसे दो तरह के लोग हैं, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो आध्यात्मिक मार्ग में, दो तरह के हैं, एक तो मायावादी निर्विशेषवादी जो भगवान के ब्रह्म की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, और दूसरे हैं भक्त जो भगवान के रूप की पूजा करते हैं। फॉर द इम्पर्सनलिस्ट द अल्टीमेट गोल और डेस्टिनेशन इज द ब्रह्म ज्योति ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई, बट फॉर द डिवोटीज द अल्टीमेट गोल इज द वैकुंठ प्लैनेट्स। जो मायावादी हैं, जो निर्विशेषवादी है, उनका लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति पे उनको लीन होना है ब्रह्म में। पर जो भक्त का लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति के आगे वैकुंठ जो लोक है, ब्रह्म ज्योति प्रकाश है, कहाँ से आता है ये प्रकाश, वैकुंठ लोकों से प्रकाश आता है। भक्त चाहते हैं कि ब्रह्म ज्योति के आगे जाके वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा करें, तो ये भक्त का लक्ष्य है। द डिवोटीज एक्सपीरियंस द अबाउट मेंशन्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स बाय अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फॉर्म्स फॉर एक्टिविटी इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो लब्धोप शांति का स्तर है, सबसे परमोच्च आनंद और शांति का स्तर है, भक्त पाते हैं वैकुंठ धाम आध्यात्मिक जगत में जाके वो भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं। But the impersonalist, because of his neglecting the association of the Lord, does not develop a spiritual body for spiritual activity, but remains a spiritual spark only, merged in the effulgent spiritual rays of the Supreme Personality of Godhead. But जो निर्विशेषवादी है वो आध्यात्मिक जगत नहीं जाते, ब्रह्म ज्योति तक ही पहुँचते हैं, और ब्रह्म ज्योति के किरण में, क्योंकि ब्रह्म ज्योति प्रकाश है, एक ज्योति है, वो ज्योति के किरण में एक अणु बन के रहते हैं। पर जो भक्त हैं आध्यात्मिक जगत में जाते हैं और उनको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, तो बहुत बड़ा ये फर्क है भक्तों में और निर्विशेषवादी में। द लॉर्ड इज द फुल फ्लेज्ड फॉर्म ऑफ इटर्निटी ब्लिस एंड नॉलेज, बट द फॉर्मलेस ब्रह्म ज्योति इज सिंपली इटर्निटी एंड नॉलेज। तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान कौन है, सच्चिदानंद विग्रह, भगवान शाश्वत है, उनका जो रूप है शाश्वत है, ज्ञान से बड़ा है और आनंद से बड़ा है, पर जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति है उसमें शाश्वत है, इटर्निटी है, सत्य है और चित्त है, ज्ञान है, पर वहां पे आनंद नहीं है। इमेजिन करो, हर कोई व्यक्ति का, बहुत सारे लोग बोलते हैं उनका लक्ष्य है शांति प्राप्त करना, ओम शांति शांति जप करते रहते हैं, पर शांति मिला, शांति से खुश रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमको शांति नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। शांति मतलब न्यूट्रल स्टेज, जीरो, पर हमको जीरो में रहना है क्या? नहीं, हमको पॉजिटिव जाना है। तो वो जो पॉजिटिव है वो है आनंद का स्तर। ब्रह्म ज्योति मतलब कुछ कष्ट नहीं है, पर कुछ आध्यात्मिक सुख भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, थोड़ा बहुत सुख है पर न्यूट्रल है, शांति का स्तर है। पर जो भगवान के धाम जाता है उसको आनंद की प्राप्ति होती है। द वैकुंठा प्लैनेट्स आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ इटर्निटी ब्लिस एंड नॉलेज एंड देयरफॉर द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु आर एडमिटेड इनटू द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो गेट बॉडीज ऑफ इटर्निटी ब्लिस एंड नॉलेज। इसलिए भगवान का जो रूप है सच्चिदानंद है, जो वैकुंठ लोक है वो भी सच्चिदानंद है, शाश्वत है, ज्ञान से भरे हैं और आनंद से भरे हैं। और जो भक्त वैकुंठ लोक में जाते हैं उनको भी शरीर सच्चिदानंद मिलता है। तो ये भक्त का लक्षण है। एज सच देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वन एंड अनदर। द लॉर्ड्स अबोर्ड नेम फेम एंटरेज एक्सेट्रा आर ऑल ऑन द सेम ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी एंड हाउ दिस ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी डिफर्स फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड इज एक्सप्लेन्ड हियर विद इन दिस वर्स। तो इसलिए ये सब फर्क नहीं है, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो गुण है, लीला है, भगवान के जो दाम है, हाँ ये सब भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट, नाम नामिनो अभिन्नत्वम। तो ये आध्यात्मिक स्तर है। तो इसलिए भगवान का जो आध्यात्मिक शक्ति है वो भौतिक शक्ति से बहुत विपरीत है, कंप्लीटली डिफरेंट। इसलिए हम जब वृंदावन जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, वृंदावन को दंडवत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जगह भी आध्यात्मिक है। भगवान को जब हम फूल चढ़ाते हैं वो फूल को भी हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, क्योंकि ये फूल का भगवान के साथ संपर्क हुआ है। हम भक्तों को भी दंडवत करते हैं, क्यों? क्योंकि भक्तों ने अपना शरीर पूरे तरह से भगवान को समर्पित किया है, तो भक्तों का शरीर भी अभी आध्यात्मिक हो चुका है। तो एक ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है। द लॉर्ड्स अवॉर्ड नेम एंट्रोज एक्सेट्रा आर ऑल ऑन द सेम ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी एंड हाउ दिस ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी डिफर्स फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड इज एक्सप्लेन्ड हियर इन दिस वर्स। इन द भगवद्गीता थ्री प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्णा, नेमली कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। बट वन कैन रीच द वैकुंठ प्लैनेट्स बाय द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योग ओनली। तो गीता में भगवान ने तीन प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन अलग अलग योग बताए। पर भगवत धाम जाने के लिए, वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाने के लिए सिर्फ भक्ति का मार्ग है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग से व्यक्ति ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, वैकुंठ पहुंच नहीं सकता। वैकुंठ जाने के लिए सिर्फ भक्ति योग की जरूरत है। द अदर टू आर इनकम्पिटेंट इन हेल्पिंग वन रीचिंग द वैकुंठ लोकस ऑल्सो दे कैन हाउएवर कन्वीनियंटली टेक वन टू द एफल्जेंट ब्रह्म ज्योति आई डिस्क्राइब्ड अबव। तो बाकी जो दो योग है, कर्म योग और ज्ञान योग, ब्रह्म ज्योति तक लेकर जा सकता है पर वैकुंठ लोक तक लेके नहीं जा सकता। तो हम टेक्स्ट 18 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।